सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय कुमार दुबे और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की 2 दिवसीय यात्रा अभी संपन्न करी और वो ट्रिनिडाड टोबैगो के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से काफी विस्तार में बातचीत की। दोनों ही नेताओं की बायलैटरल मीटिंग के बाद भारत और घाना के द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। यहाँ ये जिक्र करना भी आवश्यक है कि किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने घाना का दौरा 3 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद किया है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अजय कुमार दुबे। प्रोफेसर दुबे, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
प्रोफेसर दुबे, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के साथ साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में इन कदमों को आप कैसे आंकते हैं?
भारत जो कि एक बहुत ही विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, इसको शुरू से ही साउथ के कंट्री से, ग्लोबल साउथ से बहुत ही नजदीकी थी। एफ्रो एशियन रिसर्जेंस मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, G77 मूवमेंट और ये ग्लोबल साउथ की भी जो मूवमेंट है उसी के डायरेक्शंस में भारतीय प्रधानमंत्री इन 5 देशों में जा रहे हैं। ब्रिक्स भी एक ऐसा सम्मेलन है जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर, ग्लोबल आर्किटेक्चर है, उसको चैलेंज करता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं से अलग रास्ता खोजता है और इसमें जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी साझेदारी जरूरी है। 30 से ज्यादा देश जो ग्लोबल साउथ के हैं वो अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत की ये यात्रा घाना की और दूसरे देशों की एक ग्लोबल साउथ में कनेक्ट एस्टैब्लिश करने और भारत के साथ मित्रता बनाने की भी एक कदम है।
प्रोफेसर दुबे, आपने जैसे बताया कि एक बहुत ही मजबूत पहल है ना कि सिर्फ घाना के साथ बल्कि पूरे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की ओर। यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में ये जानकारी दी कि दोनों ही देशों ने तय किया है कि अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में एलिवेट किया जाएगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस विषय पर क्या कहा।
राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है।
प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानकारी संक्षेप में चाहूंगी यहाँ पर कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आखिर होती क्या है और दो देश अगर ऐसी साझेदारी पर आते हैं तो इसके आगे की दिशा क्या होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या कोई डिफाइंड लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है?
दो देशों की जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होती है वो किसी 1, 2 या 3 आयाम तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनको बहुआयामी संबंधों के साथ उनको किया जाता है और उनकी जो पार्टनरशिप होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए और जो विश्व की जो और भी समस्याएं हैं उन पे भी उनकी क्या कॉमन पोजीशन है, इन सारी बातों को जब एक साथ रख के एक समझौता किया जाता है, एक कॉमन पोजीशन निकाली जाती है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बनती है। और ये कुछ ही देशों के साथ होती है, सारे देशों के साथ नहीं होती। बहुतों के साथ व्यापार समझौता हो गया, सुरक्षा समझौता हो गया या किसी और खास एरिए पे वो समझौता हो गया, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ये बहुत ही आयामों को एक साथ लेकर के और ग्लोबल, रीजनल और जो द्विपक्षीय जो आयाम है उनको लेकर के बनाई जाती है।
प्रोफेसर साहब, भारत घाना का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है घाना के एक्सपोर्ट्स के लिए। द्विपक्षीय पार्टनरशिप $3 बिलियन को पार कर चुकी है। भारत और घाना ने 4 MOUs पर भी हस्ताक्षर किए हैं प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में और वो जो 4 MOUs हैं वो मेनली कल्चर, हेल्थ, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड इंस्टीट्यूशनल डायलॉग के ऊपर है। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डायलॉग कैसे अहम हो जाता है जब भारत और घाना के रिश्तों की बात आती है? क्योंकि जब किन्हीं और देशों के साथ एमओयू किए जाते हैं तो ये दो आयाम नहीं देखे जाते बाकी देशों के साथ, पर घाना के साथ इन दोनों को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है?
इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि जो हम एक जो रिश्ता हम घाना के साथ अभी बना रहे हैं वो बहुआयामी है और इसको एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके हिसाब से उसको समय समय पर एक उसकी जो स्पेशलाइज कमेटी होती है उसकी मीटिंग करनी पड़ती है और उन पे कॉमन पोजीशंस को रिव्यू करना होता है। तो इन सारे एंगल से ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो होते हैं उनको फॉलो करने से जो समझौता हुआ उस पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या करना है ये हम मिलके तय समय समय पे तय करते रहते हैं और ये एडहॉक रूप में नहीं रह जाता।
प्रधानमंत्री ने भारत और घाना के बीच बढ़ती व्यापारिक साझेदारी को भी अपने संबोधन में हाईलाइट किया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिनटेक में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपीरियंस घाना के साथ शेयर करने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि इंडियन कंपनीज कोऑपरेट करेंगी वहां पे एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है तो पूरे विश्व में अभी एक ये अहम मुद्दा है जिस पर काफी देश आपस में समझौते कर रहे हैं, इसको आप भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
क्रिटिकल मिनरल्स आगे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होने जा रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में बहुत कम कंट्रीज में पाया जाता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। चाइना के पास सबसे ज्यादा है लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है वो ये है कि क्रिटिकल मिनरल जिस भी कंट्री में हो अफ्रीका के उस पर कम्प्लीट कंट्रोल बनाया जाए और पूरे वर्ल्ड में उसके सप्लाई को नियंत्रित किया जाए। चिप्स बनाने हों, बैटरीज बनाने हों, ये सारे चीजों में इनकी बहुत ही अहमियत है और भारत चाह रहा है कि इसकी एक्सेस जो अफ्रीकन कंट्रीज के पास हैं भारत का बढ़े और उसमें घाना के पास भी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्योंकि हम ज्यादातर वहां से सोना ही निर्यात करते हैं जो हमारे निर्यात का सबसे बड़ा प्रपोर्शन है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल के हिसाब से अगर हम घाना को अभी देखते हैं तो वहां पे हमें उसके लिए निवेश करना होगा, कुछ प्रोसेसिंग करने का अरेंजमेंट करना होगा और तब हम इसमें कुछ अपने हितों को वहां पे बचा पाएंगे।
प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को भी संबोधित किया, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए क्या कहा।
इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर्स लाइक वैशाली, द ऋग्वेदा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स।
प्रोफेसर साहब, पीएम के संबोधन को आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि प्रधानमंत्री को नेशनल ऑनर ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी नवाजा गया, इस सम्मान के महत्व को आप हमारे श्रोताओं के लिए समझा पाए।
ये जो ऑनर है वो बहुत कम लोगों को दिया जाता है और जिस गर्मजोशी के साथ उनको भारत के प्रधानमंत्री को ये ऑनर एक्सटेंड किया गया उससे साफ झलक रहा था कि ये देते हुए वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक जो बड़ी लैंग्वेज थी पूरे वहां के प्रेसिडेंट जोसेफ मनामा की। और दूसरी बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि घाना और भारत दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अपने अपने ड्रीम्स रखते हैं और उन सपनों में दोनों की साझेदारी है। भारत चाहता है कि एक विकसित राष्ट्र बने, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है, उनका ये सपना है कि जैसे हम 2047 में अपना विकसित बनना चाहते हैं वो 2063 में अपना ये स्टेटस पाना चाहते हैं।
किन्हीं भी दो देशों के बीच पीपल टू पीपल टाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है, तो भारत और घाना के बीच में जो पीपल टू पीपल टाइज है उनको आप कैसे आंकते हैं? और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एमओयू साइन हुए हैं उनमें कल्चर के ऊपर भी एमओयू साइन किया गया है, तो इस पहलू पे अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा प्रकाश डालें।
पीपल टू पीपल टाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे एक जो संबंध होते हैं वो सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। भारत ने शुरू से ICCR के थ्रू स्कॉलरशिप अफ्रीकन कंट्रीज को दिया, घाना उसके बेनिफिशियरी रहे हैं। 1964 से हमने आईटेक में वहाँ के बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, घाना उसका बेनिफिशियरी रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार पीपुल टू पीपुल टाइज को बढ़ाने के लिए ये जोर दिया कि ये दोनों जो फेलोशिप्स हैं आईटेक के और इसको, वो भारत डबल कर रहा है नंबर में, जो उससे दुगने तादाद में लोग आएंगे। और ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट के बीच जो हमारा कनेक्शन है, हम दोनों डेमोक्रेसी हैं, उसके संबंधों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो डेलीगेशंस जो पार्लियामेंट के हैं वहां से उन्होंने इनवाइट किया, और जो भारतीय मूल के लोग वहां पे बिजनेस में बड़े रूप से 15,000 के लगभग वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे भी मिले, उनसे उनकी काफी लंबी मुलाकात हुई। और सबने ये सराहना की कि भारतीय मूल के लोग वहाँ पे काफी घुल मिल के खाना के भी विकास के लिए जो कार्य होता है उसमें काफी सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए पीपुल टू पीपुल कनेक्शंस जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं।
प्रोफेसर दुबे, प्रधानमंत्री अब घाना से निकल चुके हैं और अब वो ट्रिनिडैड और टोबैगो जा रहे हैं, इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं?
भारत के प्रधानमंत्री की ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले वहां भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और वो कमला विशेषर जी पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक काफी जद्दोजहद के बाद और बहुत कम मार्जिन से वो वहाँ पे इलेक्ट हुई हैं। भारतीय मूल के लोग करीब 44% हैं वहाँ पे, और एक भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाना, भारत की जो पहले की नीति रही है कि डिस्टेंस के वजह से हम कैरिबियन कंट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, उसको रिवर्स करेगी। कुछ ही महीनों पहले हमारे प्रधानमंत्री गयाना गए हुए थे, जो कि एक पड़ोसी देश है, वहाँ भी भारतीय मूल के लोग भी करीब 50% के लगभग हैं। तो वहाँ पे भी जो हमारे प्रधानमंत्री के विजिट के बाद जो एक डायस्पोरा से कल्चरल कनेक्ट हुआ, वो उस रीजन में भारत की जो पहचान है, जो पहुँच है, उसको बहुत ही मजबूत बनाती है। और भारत के प्रधानमंत्री का ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जाना, जहाँ की दूसरा आदमी उसी रीजन में कैरिबियन में भारतीय मूल का है और हेड ऑफ स्टेट है, तो भारत को ये सेलिब्रेट भी करना है और इस संबंध को, इस अवसर को एक अच्छे रिश्ते में ट्रांसलेट भी करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रिनिडैड और टोबैगो की यात्रा की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी संवाददाता साक्षी सिंह, जो इस समय प्रधानमंत्री की यात्रा की कवरेज के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन में है, उन्होंने इस करेबियन देश में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित से विस्तृत बातचीत की। इस साक्षात्कार में उच्चायुक्त ने प्रधानमंत्री की यात्रा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
यह यात्रा बहुत समय से इसका इंतजार था, और ये ऐसे समय में हो रही है जब यहाँ के लोग, जब उनके पूर्वज 180 वर्ष पहले यहाँ आए थे, उस समय को, उस क्षण को मना रहे हैं, और उस संदर्भ में उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च स्तर पे यहाँ पे आना और इतना समय देना, इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। ये न केवल सरकार अपितु सारे लोग, सभी यहाँ पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत यहाँ पे एक्साइटमेंट है, बहुत ही जिज्ञासा है, बहुत उत्साह है चारों ओर माहौल में यहाँ पे, और इसी वजह से यहाँ पे छुट्टी का भी ऐलान किया गया है उस दिन के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण पल है इन सभी के लिए।
उच्चायुक्त ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण बताया।
ये देश, जैसा मैंने कहा कि आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था के तौर पर और जनसंख्या के तौर पे कैरेबियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, और कई जो दूसरे जो छोटे देश है यहाँ इनकी नीतियों का, इनके व्यापार का, उसका अनुसरण करते हैं। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो ये एक रीजनल हब है, एक तरह से आप मानिए व्यापार हमारा है यहाँ पे, और छोटे देश को देखते हुए हमारा ठीक ठाक व्यापार है यहाँ पे, लेकिन इसमें असीम संभावना है इसको बढ़ाने की और यहाँ से पूरे रीजन में व्यापार करने की, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मुहाने पे है, तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं।
प्रोफेसर दुबे, इतनी विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय कुमार दुबे और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।